बुनियादी तौर पे दुआएं तो पूरी हो गई। कुछ लोगों को हैरत हो रही होगी, क्यों क्या कि अभी इसमें तो दुआएं ताज आई नहीं, और दुआएं तंजीना और इस तरह की दुआएं जो बस दफा हमारे कल्चर में बहुत आम है। तो आइए इसका आखिरी टॉपिक बड़े शऊर से पढ़ें। मैं दोहराऊंगी इस बात को इसलिए कि बास लोग जब सिर्फ इस वक्त थके हुए होने की वजह से कानों से अल्फाज को टकरा रहे हैं ना, तो उनको याद रह जाएगा कि अच्छा हाँ वो दुआ का नाम भी हमारी इस बुक में आया था। लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, अल अदियतु वल औरादी गैरिल मासूरा, गैर मसनून दुआएं और वजीफे। अल अदियतु क्या है, दुआ की जमा, वल औराद विर्द की जमा है, औराद विर्द को कहते हैं, विर्द वजीफे को उर्दू में, गैरिल मासूरा जो के सुन्नत से साबित नहीं, गैर मसनून के हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आज कल्चर में आम है, हम इसको इसलिए पढ़ लेंगे, क्यों पढ़ेंगे भला हम ये टॉपिक, हम ना पता हो कभी कहीं आप पढ़ें तो आप सोचेंगे कि शायद हमारी साथ को तो ये दुआ नहीं पता थी, ये तो मुमकिन है, लेकिन इस बुक वाले को नहीं पता थी। तो जिस तरह सही चीज पता होनी चाहिए, इस तरह गलत चीज का भी पता होना चाहिए। तो बस क्विकली इसके टॉपिक्स दोहरा देंगे, दर्जा ज़ैल औराद वज़ाइफ और अदिया और अस्कार सुन्नत रसूलुल्लाह या आसार सहाबा से साबित नहीं। पहले तो ये लफ्ज आप मेरे पीछे दोहराए, मुझे यकीन है कि इसमें बड़ी गलतियां करेंगे। पढ़ेंगे आप, औराद वज़ाइफ अदिया और अस्कार। और ये जो हमने सुन्नत रसूल के बाद लफ्ज आसार पढ़ा है ना, सहाबा के आसार, उसे क्या मुराद है, असर से। जैसे नबी सल्लम की बात को हदीस कहते हैं ना, तो सहाबा तक जो बात रुक जाती है उसको असर कहते हैं, ठीक है, असर सा से, तो आसार उसकी जमा। नापाक जिस्म, कपड़े या बर्तन को पाक करने के लिए धोने के दौरान या बाद में कलमा शहादत पढ़ना, कभी आपने किसी को ऐसा करते देखा? जी, नानियां दादियां वो कपड़ों को मुसलमान करती थी, टब मासी ने जमा दादी ने हाथ लगा दिया, चलो इसको कलमा तैयबा पढ़ाओ। हैरत की बात है, हमने इस कलमे को दिल में रखने की बजाय हाथों पे रखा हुआ है। अब इस पे आज दो नफिल तौबा के पढ़िएगा। गुस्ल जनाबत या गुस्ल हैज के दौरान या बाद में कलमा शहादत या ईमान की सिफात वगैरह पढ़ना, ये किसको याद है, करते थे ऐसा? आप सोचिए कि वैसे ही इस हालत में मुंह से कुछ नहीं बोलना होता और आप कलमे पढ़ते हैं, हैरत की बात है ना। वुजू करते वक्त हर उज्व की अलग अलग दुआ मांगना, आप जरा सोचे कुली करने के दौरान आप दुआ कैसे मांगेंगे, मुंह पे पानी पड़ेगा तो दुआ कैसे मांगेंगे, पानी अंदर जाने का खतरा होता है ना। अजान से कबल दुरूद शरीफ पढ़ना, आजकल भी कुछ मस्जिदों में आवाजें आती हैं पाकिस्तान में इवन, तो ये बिदअत है। नमाज की नियत के अल्फाज अदा करना, कितने लोग करते हैं अभी तक, उर्दू में दो नफिल नमाज पढ़नी, पीछे इमाम के, नीचे जमीन के, ऊपर आसमान के, अल्लाह को पता है नियत क्या है, दिल का अमल है। वो एक वक्त बना के पढ़ दिया ना, आदत बना ली। आप मिसाल घर बैठे जब मर्जी पढ़ें, लेकिन आप मेंबर पे जब अजान देने गए तो उससे पहले दुरूद पढ़ते हैं और आप हमेशा पढ़ते हैं, तो आपने एक कानून बना लिया ना, और उसको फिर सवाब का जरिया भी समझा। अंडरस्टैंड, फर्ज नमाज के बाद इज्तमाई दुआ का हमेशा इख्तमाम करना है हमारे कल्चर में, नमाज छोटी दुआ लंबी, बिल्कुल सारे मिल के दुआ नहीं करना चाहिए बाद में, जैसे जमात की नमाज खत्म हुई फर्ज हुए तो इमाम साहब हाथ उठा ले। देखिए अल्लाह से राबता तो आपका नमाज में जुड़ा हुआ था, उसमें लंबी दुआएं मांगे, तशहुद में मांगे, सजदों में मांगे, नमाज के बाद तो ऐसे जैसे लाइन आप डिस्कनेक्ट हो गई, ये अलग बात है कि अल्लाह ताला से लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होती। तो नमाज में दुआ मांगने का बेस्ट टाइम जो होता है वो तशहुद के बाद है, लंबी दुआएं, घंटा बैठे रहे आप आखिर में अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। तो ये हमारे कल्चर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका यहाँ तस्करा। फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से इज्तमाई जिक्र करना, ये भी लोगों को देखा गया, हल्का बांध लेते हैं और इस तरह करते हैं। नमाज जुमा के बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाह का इहतमाम करना, नमाज जुमा के बाद एक दूसरे को तकब्बलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम कहना, ये कहाँ कहते हैं भला, ईद के लिए कहते हैं, तो वो ईद को जुमे से क्यास करके कि जुमे का दिन भी मुसलमानों का ईद के, कुछ लोग ऐसा करते हैं। नमाज जुमा के बाद खड़े होकर बुलंद आवाज से इज्तमाई दुरूद शरीफ पढ़ना, जुमे के दोनों खुतबों के दरमियान 3 मरतबा बुलंद आवाज से इज्तमाई दुरूद शरीफ पढ़ना। हमें असल में बहुत सारे मसाले डालने की आदत है, खाना भी, फ्रूट भी हम फीका नहीं खाते ना, उसमें भी डालते हैं। तो इबादत में भी हमने मर्ज मसाले डाल लिए हुए हैं, सिर्फ मोहब्बत में। कोई बुरी नहीं है से कभी ऐसे काम करता भी नहीं है। ईद के दोनों खुतबे तकबीर से शुरू करना, नमाज जनाजा से कबल अजान देना, नमाज जनाजा के बाद सफ में बैठ कर दुआ करना। अच्छा, नमाज जनाजा से पहले अजान तो हो चुकी होती है, कब भला? जब बच्चा पैदा होता है। जिंदगी हमारी इतनी है जो अजान से लेकर नमाज के बीच के 15 मिनट है। बच्चा पैदा होता है तो अजान दी जाती है, फौत होता है तो नमाज पढ़ा दी जाती है। ईद के दोनों खुतबे तकबीर से शुरू करना, नमाज जनाजा से कबल अजान देना, नमाज जनाजा के बाद सफ में बैठकर दुआ करना। नमाज जनाजा भी असल में दुआ है, वो तो 3 मिनट में लोग पढ़ा देते हैं, अस्सलाम, अभी सीधा दुरूद भी नहीं पूरा किया होता, चौथी में अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मसनून अमल के वहां मैयत के लिए दुआ करें। इतनी खूबसूरत दुआएं हैं नबी सल्लम की सिखाई हुई, तो उस वक्त कसरत से मांगनी चाहिए। एक आलिम थे तो उनकी बात में मैंने सुना कि नमाज पढ़ाई तो उसके बाद कहते हैं जब मैंने थोड़ी दुआएं मांगी तो बाद में आगे एक शख्स बड़े गुस्से में था, मौलवी साहब आपने बड़ी लंबी नमाज जनाजा पढ़ाई है, आपको नहीं पता लोग काम छोड़ के आए होते हैं। तो उसने कहा कि बरखुरदार, मैंने नमाज नहीं लंबी पढ़ाई, असल बात है कि मरने वाला ये आपका अपना नहीं था, आप सिर्फ मुंह दिखाने आए हुए, अगर आपका अपना होता तो आप तो तड़पते कि दुआ हो। इसी तरह एक सहाबी के बारे में आता है कि वो फौत हुए तो नबी सल्लम ने उनकी इतनी जनाजे की दुआ लंबी पढ़ाई के थाड़े मार के लोग रो रहे थे। तो एक शख्स बहुत ही रोने लगा, कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो फौत हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि काश ये दुआएं अल्लाह के नबी ने मेरे ऊपर पड़ी होती। तो इतनी हिरस होती है उस वक्त, तो बंदा डूबती हुई कश्ती की तरह होता है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजें जो दीन को रस्मी तौर पर रखने की वजह से आती हैं, ये आज हमारे कल्चर में आम है। रोजा रखने की नीयत के अल्फाज अदा करना, अक्सर आपको कैलेंडरों पे दुआ भी दिखेगी, गदई तो बिन नौमिन या नवई तो भी बिसौमिन गदई था, कुछ इस तरह के अल्फाज है, तो ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। शहर में दाखिल होने की मसनून दुआ के अलावा मक्का या मदीना में दाखिल होते वक्त दूसरी दुआएं मांगना। तवाफ करने की नीयत के अल्फाज अदा करना, तवाफ के हर चक्कर में अलग अलग मुरव्वजा दुआओं का इख्तमाम करना। मुरव्वजा क्या? जिनका रिवाज बढ़ गया, फैशन। सही की नीयत के अल्फाज अदा करना, सही के हर चक्कर में अलग अलग मुरव्वजा दुआओं का इख्तमाम करना। मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजम पर मखसूस मुरव्वजा दुआओं का इख्तमाम करना। मक्का से रुखसत होते हुए विदाई दुआ मांगना। मस्जिद में दाखिल होने की मसनून दुआ के अलावा मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में दाखिल होते वक्त दूसरी दुआएं मांगना। रोज़े रसूल पर मसनून दुरूद व सलाम के अलावा दूसरे तवील और अरीज मुरव्वजा दुरूद व सलाम पढ़ना, यानी जो सिखाया गया वो पढ़ने की बजाय दूसरे पढ़ना। रोज़े रसूल पर दुरूद व सलाम के बाद अशफ़ेनी बिल्लाही अलामान या रसूल अल्लाह, अशफ़ात या रसूल अल्लाह जैसे अल्फाज कहना, ये मतलब सारी बातें जो है इस तरह की कहना ये सुन्नत से साबित नहीं है। दुरूद व सलाम के बाद वलवन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम तिलावत करके बख्शिश की दुआ करना। क्या पता चला? ऐसी चीजें जिसमें आयतों में कुछ मानी है, क्योंकि इस आयत में वाकई एक नबी सल्लम की जिंदगी का मामला है, तो उसी को अब लोग आपके दुनिया से जाने के बाद कियास करके ऐसे अल्फाज पढ़ते। नज़ूल वही की जगह खड़े होकर मलाइका पर सलाम भेजना। इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, फतेह ख्वानी, रस्म कुल 10वां 40वां इसका इख्तमाम करना। मैयत दफन करने के बाद सर की तरफ खड़े होकर सूरह फातिहा और पांव की तरफ सूरह बकरा की इब्तदाई आयतें तिलावत करना। मैयत को गुसल देते वक्त कुरान पाक की तिलावत या जिक्र करना। जनाजा ले जाते हुए बा आवाज बुलंद जिक्र करना। बिस्मिल्लाह का कुरान पाक खत्म करना। पता है आपको ये क्या होता है? हर लाइन पे लोग बस बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं, कहते हैं अब नहीं सही पढ़ते, नहीं आता पढ़ना, बस बिस्मिल्लाह पढ़ते जाओ, ये भी एक बिदत है। चनों पर 70,000 मरतबा कलमा पढ़ना। 1.5 लाख बार आयते करीमा खत्म करना। 27 रजब को महफिल जिक्र मुनक्किद करना। 27 रमजानुल मुबारक की रात यानी शब कदर में 7 मरतबा सूरत मुल्क पढ़ना। 15 शाबान की रात शब बरात 3 दफा सूरह यासीन और 21 मरतबा सूरत बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना। इज्तमाई दुआ मांगने से कबल बावाज़े बुलंद इज्तमाई दुरूद शरीफ पढ़ना। 1 रबीउल अव्वल से 21 रबीउल अव्वल तक रोजाना बात नमाज ईशा 1,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना। 12, 13, 14 रबीउल अव्वल को ईशा की नमाज के बाद 7,741 7741 मरतबा या बदीउल अजायब का वजीफा करना। सुना होगा लोग करते होंगे कभी ऐसे, مشکل. اور آپ دیکھیے اتنی لمبے وظیفے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ کوئی وظیفہ گن کے نہیں کرتے تھے. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے، 100 زیادہ سے زیادہ گنتی ہے، اس کے بعد آپ انفینٹ پڑھتے تھے. آج تو ہم نے تسبیحیں بنائی، موتی گنے، ان بیچاروں کے پاس یہ کچھ کہاں تھا. اور انگلی پہ آپ دیکھیں 100 سے زیادہ آپ گننا شروع کریں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور جتنا کھلا پڑھے. لیکن یہ ہزاروں کے وظیفے، کبھی سوچے جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن ابھی خود، وہ کیسے یہ 7,741 بار گنتے ہوں گے. ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل ذکر منعقد کرنا. یکم محرم سے 10 محرم تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا. اسماء گرامی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، ان کا وظیفہ کرنا. قصیدہ غوثیہ، ختم شریف کبیر غوثیہ، عہد نامہ، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، الاسبو تو پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلے دیکھ لیں. اوراد الاسبو، جی اوراد الاسبو ورد کے ساتھ اوراد ہے. چہلے کاف یعنی 4 کاف کے ساتھ صورتیں جو شروع ہوتی ہیں. مسبیات اشر اور شش کفل، ہفت کے ہیکل، درود تاج، درود تنجینہ، درود ماہی، درود مقدس، درود لکھی، درود اکبر، دعائے امن، دعائے منزل، قرآن پاک کی ہر منزل ختم کرنے کی دعا، دعا یام بیز مکرم، دعائے سریانی، دعائے جمیلہ قد ہے معظم و مکرم، دعائے حبیب، دعائے مستجاب، دعا نصف شعبان المعظم، دعا خزب البحر، دعائے اکاشا، دعا گنج العرش. یہ سب چیزیں جو ہیں سنت سے ثابت نہیں ہیں. کتنی ہیں دیکھیں، 68. کسی سے آپ کہنا کہ یہ 68 حدیثیں یاد ہیں آپ کو، یا اتنی آپ کو کوئی دعائیں یاد ہیں تو کم ہی یاد ہوں گی، لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ضرور ہم نے سنی ہوئی ہیں. صرف اللہ اللہ یا اللہ ہو کا ذکر کرنا یا ضربے لگانا سنت رسول اور آثار صحابہ سے ثابت نہیں. کبھی دیکھا آپ نے لوگوں کو اس طرح کے وظیفے کراتے، حلقے باندھتے، حصار اور اللہ ہو اللہ ہو سینہ پیٹتے؟ کئی ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں پر تصوف اور صوفیزم کا غلبہ ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت لا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھ لیجئے، ذکر قلبی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن سے افضل سمجھنا سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. یعنی کہتے بیٹھے ہوئے دل میں ذکر کرتے جاؤ، ذکر قلبی کے نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ دل میں ہی ذکر کیا جائے. اللہ اللہ کا ذکر کی ضربوں سے اللہ کا جسم کے اندر سرایت کرنے کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. سوچیے کتنا باطل عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم اتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اس طرح اللہ تعالی ہمارے جسم کے اندر نوز ملا حلول کر جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی کامل ولی، بزرگ، غوث یا کتب سے اجازت حاصل کرنا سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. ذکر کی مدرجہ ذیل قسم سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. اللہ اللہ کے ذکر کی درجہ ذیل زکوٰۃ مقرر کرنا سنت رسول سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی کی روح کا رسول اللہ کی محفل میں پہنچنے یا بیت المعمور تک پہنچنے کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. کہتے ہیں یعنی آپ ایک وقت آتے اتنا ذکر دل میں کر لیتے ہیں کہ پھر آپ کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں تک چلی جاتی ہے. ذکر قلبی کرنے والوں کو رسول اللہ کی زیارت کرانے کا دعویٰ کرنا سنت سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی سے قبر میں منکر نکیر کے سوال نہ کرنے کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی کا مرنے کے بعد قبر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو فیض پہنچانے کا عقیدہ سنت سے ثابت نہیں. 60 سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. یہ نہیں کوئی کہتا کہ 5 وقت نماز کا انکار کرنے والے کو اللہ کے نبی اپنی امت سے نکال دیتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. جہاں پہ بک بھی پوری ہوئی، دعا کریں کہ عمل بھی رہے، ان کی دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھیں. چھوٹی بڑی کتنی بے شمار دعائیں ہم نے اس بک میں سیکھی ہیں، ایک خزانہ ہے. جس بک سے خود پڑھا ہوتا ہے وہ یاد بھی جلدی ہوتی ہے، اس لیے اسی میں سے صبح و شام کی دعاؤں کو اور باقیوں کو پڑھنے کی عادت بنائے، انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا. جی
یہ
کدھر ہے؟ جی اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، رسم قول دسواں چالیسواں کا اہتمام کرنا جی،
اسارے ثواب سے مراد یہ کہ جو مر گیا
اس کے ثواب کی نیت سے جب قرآن خوانی،
لیکن اس کے ثواب کی نیت سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے،
قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں،
مل کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اگر زیادہ لوگ بیٹھ کے، سب گھر والے سارے بیٹھ کے مل کے اس کے کام بھی کریں، اس طرح
سورت نجم میں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، آپ کی تفسیر میں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.